नमस्कार, एक बार फिर से हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं
आपके अपने कार्यक्रम नई दिशा के दूसरे एपिसोड में।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव और आपकी राय हमारे उत्साह को दुगना करते हैं, इसलिए हम आपके अनमोल सुझावों का हार्दिक स्वागत करते हैं।
वो एक शायर ने कहा है ना कि खुशियों की सुबह हो, गमों की शाम ढले, जब दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चलें। इसीलिए हमारे इन कदमों में अपने कदमों का योगदान भी आप जरूर दीजिए।
वाह भाई वाह, जगत जी, आपका शायराना अंदाज तो कमाल का है।
शुक्रिया।
कहाँ से सीखा ये अंदाज?
बस यूँ समझ लीजिए, कुछ आप जैसे लोगों की दुआओं का असर है।
भाई देखिए, हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं।
धन्यवाद प्रेमा, आपकी दुआएं मैं जरूर संभाल कर रखूंगा। कहते हैं जो काम दवा नहीं कर सकती, दुआएं कर देती हैं।
बात तो आपकी 16 आने सच है जगत। हमारा प्रेम व्यवहार, हमारा सही नजरिया ही हमें समाज में अलग पहचान देता है। अब अक्सर देखने में आता है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कोई HIV पॉजिटिव है, लोगों का उसके प्रति नजरिया ही बदल जाता है और हम उसे नीची निगाह से देखने लगते हैं, जबकि HIV ग्रस्त व्यक्ति सालों साल बिल्कुल फिट जीवन जी सकते हैं।
इसलिए दोस्तों, जरूरी है HIV से जुड़ी सही और सटीक जानकारी रखना। याद रखिए, HIV एड्स से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो एड्स का आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, और ये दुनिया तो जितनी जानो कम ही है।
हाँ, और जानकारी कम ना हो इसीलिए तो है हमारे कार्यक्रम का अगला सेगमेंट, जानो अनजाने।
प्रेमा,
हाँ,
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि HIV कैसी बीमारी है और ये शरीर पर क्या असर करता है?
जगत, ज्यादातर लोग यही तो नहीं समझ पाते। HIV कोई बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि एक वायरस है, और इस वायरस के शरीर में घुसने से शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता घटती जाती है।
अरे तो बताइए ना प्रेमा जी, हमारे श्रोता भी तो जाने कि सही माजरा क्या है।
दोस्तों, दरअसल HIV एक ऐसा विषाणु है।
विषाणु यानी वायरस?
हाँ जगत, HIV वायरस ही है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है।
श्वेत रक्त कोशिकाएं? आपके कहने का मतलब है हमारे खून में पाए जाने वाली दो मुख्य कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाएं।
जी हाँ, जिन्हें WBC और RBC भी कहा जाता है। WBC यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, जो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ती हैं। HIV इन्हें नष्ट कर शरीर में इनकी मात्रा को कम करता रहता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है, और साधारण बीमारियां जैसे खांसी जुकाम, इन्हें भी ठीक होने में लंबा समय लग जाता है, और शरीर को उस स्थिति तक पहुंचा देते हैं जहां पर TB, हर्पीस, दस्त और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और HIV ग्रसित व्यक्ति एड्स की स्थिति तक पहुंच जाते हैं।
यानी HIV वायरस है और एड्स बीमारियों से न लड़ पाने की अवस्था यानी सिंड्रोम है।
जी हाँ।
ओहो, आपकी जानकारी से भेजा बिल्कुल फ्राई हो गया।
हाँ, तो तुम्हारा इशारा हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट यानी भेजा फ्राई की तरफ है। हाँ
जी हाँ।
भेजा फ्राई में आज का सवाल, HIV और एड्स में क्या अंतर है? एक बार फिर से सुनिए, HIV और एड्स में क्या अंतर है? और आपके ऑप्शन हैं, ए, दोनों एक हैं, बी, HIV वायरस है जबकि एड्स एक सिंड्रोम है, सी, HIV बीमारी है जबकि एड्स उसका इलाज है, डी, ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। अपने ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए, ए, दोनों एक हैं, बी, HIV वायरस है जबकि एड्स एक सिंड्रोम है, सी, HIV बीमारी है जबकि एड्स उसका इलाज है, और डी, ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं।
थैंक्स क्विज मास्टर जी। लिसनर्स, आप अपना सही जवाब हमें SMS करें इस नंबर पर 9717678223। लिखें ND2 भेजा फ्राई स्पेस और फिर आपका ऑप्शन। याद रहे सिर्फ एसएमएस करें, नंबर है 9717678223।
सही जवाब भेजने वालों को मिलेगा एक स्मार्ट भेजा फ्राई कैप। तो लग जाइए अपने मोबाइल पर एसएमएस करने में, क्योंकि ये सबसे स्मार्ट जवाब देने वालों को दिला सकता है एक स्मार्ट भेजा फ्राई कैप। शायद वो खुशकिस्मत आप ही हो।
हमें बहुत ही बेसब्री से आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।
प्रेमा, पिछले हफ्ते के सवाल का सही जवाब भेजने वालों का नाम तो बताओ।
बताती हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, HIV क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, HIV एक वायरस है। और हमारे लकी विजेता हैं रमेश दिल्ली से। इन्हें मिलेगा हमारी तरफ से एक स्मार्ट भेजा फ्राई कैप।
तो दोस्तों, आप भी चूकिए नहीं, जल्दी से इस हफ्ते के सवाल का सही जवाब हमें SMS कीजिए। क्या पता अगले कैप के हकदार आप हो।
और अब समय है हमारे आज के मेहमान से मिलने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए हम अपने सहयोगियों हेवल वानी, मंदाकिनी की आवाज़ और दिल्ली और मुंबई के हमारे सामुदायिक संवाददाताओं के भी आभारी हैं। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य HIV की जानकारी देना है, और HIV से जुड़े वो अनेकों मुद्दे हम उठाएंगे जिनकी जानकारी ना होने की वजह से ही HIV इतना फैलता है। और पलायन की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में भी की थी, क्योंकि पलायन और HIV के मिले जुले खतरे होते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे मेहमान ललित कुमार से, जो खुद प्रवासी हैं, और जानते हैं उनसे कि प्रवास के दौरान HIV के खतरों को किस तरह दूर रखा जा सकता है। ललित, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
जी धन्यवाद।
हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ अपने बारे में बताएं।
मेरा नाम ललित है, मैं ग्राम ढोंड जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मैं दिल्ली में मुनिरका में रहता हूं, वहीं पर अनुपम रेस्टोरेंट में काम करता हूं। वहीं पर काम करते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं।
ललित जी, आप अपने परिवार वालों से संपर्क कैसे रख पाते हैं?
मैं उनको फोन करता रहता हूं, तथा मेरे दोस्त लोग घर जाते रहते हैं, उनके लिए कुछ पैसे या कपड़े भेजता रहता हूं।
और ये क्यों जरूरी है?
परिवार के साथ संपर्क में रहना इसलिए जरूरी है कि अगर संपर्क में न रहूं तो मुझे टेंशन हो जाती है। मुझे लगता है कि परिवार से अलग होने पर गलत रास्ते में न चल पड़ूं, इसलिए परिवार के साथ संपर्क रहना जरूरी है।
अच्छा ललित जी, एक बात बताइए, आपके अनुभव में प्रवास से HIV का खतरा कैसे जुड़ा है?
जी, मुझे लगता है कि गाँव से जो लोग नए प्रवासी शहर आते हैं, उनको शहर का माहौल मालूम नहीं होता, जिससे वह गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। यहाँ तक कि वह गलत यौन संबंध बना लेते हैं, और इन लोगों को HIV की जानकारी नहीं होती, और ये लोग कंडोम का भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यह HIV के शिकार हो जाते हैं।
हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस खतरे को एक प्रवासी कैसे कम कर सकता है?
इन लोगों को HIV के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इससे बचने के उपाय उन्हें मालूम होने चाहिए।
तो श्रोताओं, अब समय है आपकी बात का,
यानी आपकी भेजी हुई चिट्ठियां पढ़ने का।
वो बातें, वो सवाल जो आप किसी से न बांट पाए हों, न पूछ पाए हों, तो हमें लिखिए। अगर आप चाहें तो हम आपका नाम गुप्त रखकर आपके सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह हम किसे शामिल कर रहे हैं आपकी बात में।
और आज का हमारा खत है सरिता सुयाल का, जो खाड़ी की रहने वाली हैं, और इनका सवाल है, यदि मैंने किसी गलती के कारण HIV/AIDS से ग्रसित व्यक्ति का खून इस्तेमाल किया है तो मुझे HIV/AIDS होने के कितने प्रतिशत चांस हैं? सरिता जी, वैसे तो कभी भी अगर आपको खून की ज़रूरत हो तो जांचा हुआ खून ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप पंजीकृत ब्लड बैंक से खून लेती हैं तो ये जांचा हुआ होता है, और अगर किसी वजह से सावधानी नहीं बरती गई है और आपको HIV ग्रसित खून चढ़ाया गया है तो आपको HIV होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसी कोई शंका है तो तुरंत अपने निकट के VCTC यानी स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र में जाकर खून की जांच करवानी चाहिए।
और इनका दूसरा सवाल है कि अगर HIV संक्रमण हो जाए तो मुझे AIDS होने में कितना समय लगेगा? देखिए सरिता जी, जैसा हमने कहा, HIV होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, मगर एचआईवी ग्रसित होना एड्स की स्थिति में पहुंचना नहीं है, और एचआईवी संक्रमण होने के बाद हर व्यक्ति में इसकी परिस्थिति तक पहुंचने का समय अलग अलग होता है। एचआईवी संक्रमण के बाद शरीर में कोई भी लक्षण दिखने के लिए लगभग 5 से 7 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन इस दौरान आप कोई भी जोखिमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो आपके द्वारा एचआईवी का वायरस दूसरे व्यक्ति को भी ग्रसित कर सकता है। तो लिसनर्स, एचआईवी से जुड़े आपके सवाल हमें इसी तरह चिट्ठी में भेजते रहें। हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा। हमें बहुत ही बेसब्री से आपके पत्र का इंतजार रहेगा।
जगत, जल्दी करो, हमारे श्रोताओं को भी उतनी ही बेसब्री से उस सेगमेंट का इंतजार होगा जितनी बेसब्री से हम उनके खतों का करते हैं।
प्रेमा, मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब हमारे साप्ताहिक रेडियो धारावाहिक जीवन की राह से है।
और नहीं तो क्या।
तो आइए सुनते हैं रेडियो धारावाहिक जीवन की राह।
आज तो लगता है लकड़ियां बीनते बीनते अंधेरा हो जाएगा। लक्ष्मी, तू भी जल्दी जल्दी हाथ चला, घर चलकर खाना भी बनाना है।
आह,
अरे क्या हुआ? ये लो, कुल्हाड़ी दे मारी। अरे ये तो खून निकल आया।
अरे कुछ नहीं हुआ, बस ध्यान बट गया था तो जरा लग गई।
तू भी ना, दिमाग कहाँ और दिल कहाँ, पता नहीं किस फिक्र में अपने आप को घोले जा रही है। अपना ध्यान रख पगली, पीछे बच्चे हैं, बूढ़े सास ससुर हैं।
मुझे तो ध्यान है धनवंती, पता नहीं उनके ध्यान को क्या हो गया है। शहर जाकर मेरे साथ साथ बच्चों को, माँ पिताजी सबको भूल गए हैं।
अरे जयपाल अगर शहर गया है तो घर की जरूरत के लिए, फिर मेरे पति भी तो हैं साथ में, कोई भी ऐसी बात होती तो वो मुझे जरूर बताते।
मेरा तो हर रोज सोच सोच के दिल बैठा जाता है धनवंती, पहले तो वो ऐसे नहीं थे। जब पहली बार शहर गए थे तो तीसरे चौथे महीने घर वापस आ जाया करते थे। पूछो तो बोलते, बच्चों के और तेरे बगैर शहर में मन नहीं लगता, और पैसा इसीलिए तो कमाता हूँ कि तुम लोगों की अच्छी देखभाल कर सकूं। मगर ना जाने किसकी नजर लगी है, पिछले 1-1.5 साल से घर वापस मुड़कर आने की नहीं सोची उन्होंने। ये तो बस छोटा सा घाव है, 2 दिन में भर भी जाएगा, मगर मन में एक फांस सी गड़ जाती है जब ख्याल आता है कहीं कोई दूसरी औरत तो
नहीं। लक्ष्मी, जयपाल अपने बीवी बच्चों को भूलकर दूसरी औरत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और तूने क्या बुरा किया है जो भगवान तेरे साथ ऐसा करेंगे? सब ठीक होगा, ऐसे हिम्मत हारने से क्या होता है।
क्या करूं धनवंती, हिम्मत जवाब देने लगी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बूढ़े सास ससुर, दिन रात काम करके भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। क्या होगा कुछ समझ नहीं आता।
निराश मत हो लक्ष्मी, मैं अपने पति से बात करूंगी, इस बार त्योहार में तेरे पति को साथ लेकर आए, चाहे कैसे भी हो, भले ही जिद से लाए। ठीक है, चल अब अंधेरा होने लगा है, घर चलते हैं।
सर, सुना है सिंह जी स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी लेने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, आपसे कुछ बात की है क्या सर?
हाँ, बनवारी बता तो रहे थे ऐसा कुछ, पर सिंह ने मुझसे कुछ नहीं कहा अभी तक।
सर, उन्होंने बनवारी को ही आगे कर अपनी बात आप तक पहुंचाने का काम किया है। मैंने तो सुना है कि दोनों आजकल रोज ही बैठ रहे हैं। सर,
बनवारी का हाल तो सबको पता ही है, अब उनके चक्कर में रहेंगे तो ये सब तो करना ही पड़ेगा।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर?
आइए।
सर मैं निकलता हूँ।
नहीं, अभी आप रुकिए शर्मा जी।
सर आपने बुलाया था?
हाँ राजन सर, अब बताइए आप अपने तौर तरीके ठीक करेंगे या नहीं? ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपकी कई शिकायतें आ चुकी हैं, आपको वार्निंग भी दी जा चुकी है, फिर भी आप अपना रवैया ठीक करने को तैयार नहीं है, इसे क्या समझा जाए?
सर वो बच्चे हैं, उन्हें मार पीट कर या डांट फटकार कर ठीक करना उचित नहीं होगा। मैंने उनसे बात की है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बचपन में तो इतना उत्साह रहता ही है। सर
आपको लगता है दुनिया में एक आप ही हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं? यहाँ पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गए, हमारे क्लास में तो कभी ऐसा नहीं होता। बच्चे अगर शोरगुल करेंगे तो सीखेंगे क्या?
सर, पिछले 25 सालों में दुनिया काफी बदल चुकी है। अब बच्चों को पहले की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। नई शिक्षा प्रणाली में बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की बात की जा रही है, और ये सब हमारे टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है, वो ट्रेनिंग जो सरकार से हमें मिली है।
मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए इस स्कूल में एक ही बात मायने रखती है, और वो है अनुशासन। अनुशासन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस बात का ख्याल रहे कि आगे से ऐसा नहीं हो, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी पड़ सकती है, जो हम चाहते नहीं। अब आप जा सकते हैं।
पर सर, आप मेरी बात तो सुनो।
आप बेकार में बात ना बढ़ाएं, आपके लिए यही ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, इसे अभी निपटाना।
ठीक है सर, जैसा आप कहें।
सर, आपने तो राजन की छुट्टी ही कर दी। राजन का मुंह एकदम जरा सा होकर रह गया। सर, आप भी बहुत कड़क हैं। सर,
अभी नया नया आया है और मुझे ही टीचिंग मेथड सिखा रहा है।
आपने ठीक किया सर, पता नहीं किस गुमान में रहता है, सीनियर जूनियर का भी कुछ ख्याल नहीं करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है।
इसीलिए तो इसके क्लास में इतना हो हल्ला मचा रहता है, खुद जैसा है बच्चों को भी वैसा ही बनाना चाहता है।
सर, मैंने तो सुना है कि वो लड़कों को भड़काता भी रहता है।
अभी ठीक करता हूँ इसे। जब तक मैं प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल में ये सब नहीं चलेगा।
क्लास कैसा हुआ आज सुमन?
अच्छा हुआ।
पर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है?
सिंह सर ने आज फिर डांट पिलाई।
पर क्यों?
बिना बात के।
आज तेरे पिताजी को भी प्रिंसिपल ने डांट पिलाई, और वो भी बिना वजह।
क्या, पापा को भी डांट पड़ी? पर क्यों?
पता नहीं क्यों, इतनी अच्छी तरह पढ़ा रहे थे सर। राजन सर जब पढ़ाते हैं ना, तब क्लास में मन लग जाता है। बाकी टीचर्स तो आकर ही बोलना या डांट पिलाना शुरू कर देते हैं, हमें क्या पसंद है ये कोई नहीं सोचता।
पहले भी उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, तब घर में 2 दिनों तक वो उदास बैठे रहे थे।
सुमन, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें राजन सर जैसे पिता मिले हैं।
हाँ, मैं जानती हूँ, पर जब माँ थी घर में तब सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। हमारा पुराना स्कूल भी काफी अच्छा था। माँ की मौत के बाद सब बिखर गया। पापा वहाँ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए तबादला करवा कर यहाँ चले आए। जब से यहाँ आए हैं एक पल भी ठीक से नहीं गुजरा है।
क्या हुआ था माँ को?
मैं बहुत छोटी थी, दोनों कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। दोनों को वहीं पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। माँ की हालत नाजुक थी, एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही वह चल बसी। पापा को भी काफी चोट आई थी, वो बेहोश थे, उन्हें खून भी चढ़ाना पड़ा था। अगले ही दिन होश आ पाया था उन्हें, लेकिन उस एक एक्सीडेंट ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया।
चिंता नहीं करते सुमन, चिंता नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा।
क्या ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है हर कोई मुझसे नफरत करता है, घर में भी ठीक नहीं लगता, स्कूल में भी वही हाल। तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
कोई कैसे नहीं, मैं हूँ ना। हाँ, चलो चलो चलो, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं करते सुमन।
हमारा जीवन कितना विचित्र है, अभी ये अभी वो। अब देखो ना, एक एक्सीडेंट ने सुमन के जीवन में कितना भूचाल मचा दिया।
तुम सही कह रहे हो जगत, सुमन की तकलीफ देखकर तो मेरा मन भी भारी हो गया है।
प्रेमा जी, जिंदगी प्यार का गीत है तो जिंदगी दर्द का सागर भी है।
जिंदगी कैसी है बहेली।
दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट का, और ये है क्या किया जाए।
दोस्तों, कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जब क्या किया जाए पता ही नहीं चलता, या हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि इसमें हम कर ही क्या सकते हैं।
हाँ, कभी कभी वाकई ऐसा लगता है जगत।
पर आप चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि हर समस्या अपने पीछे समाधान लेकर आती है, मगर हम समस्या को देखने के चक्कर में समाधान देख ही नहीं पाते।
जी हाँ दोस्तों, हमारे इसी समाज में ऐसी कई मिसालें हैं जब लोग समस्या का ऐसा हल दूसरा नजरिया अपनाकर निकालते हैं जो काबिले तारीफ है।
जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक मिसाल है दिल्ली के शकरपुर इलाके की, जहाँ पर एक सामुदायिक पार्क में कुछ युवाओं ने शराब पीने का अड्डा बना लिया था। कई बार मना करने पर भी जब वो नहीं माने तो वहाँ के बुजुर्गों ने एक बेमिसाल तरीका निकाला इसे रोकने का।
और जानते हैं उन्होंने क्या किया? शाम के वक्त जहां वो युवा लोग शराब पीने बैठते थे, बुजुर्गों ने उससे पहले से ही वहां बैठकर हरि भजन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पार्क में वो शराब पीने का युवाओं का अड्डा बुजुर्गों के भजन स्थल में बदल गया।
तो देखा दोस्तों, ये है समस्या को हल करने का दूसरा नजरिया। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई हो जब आपने या आपके मित्रों ने किसी मनोरंजक तरीके से समस्या को सुलझाया हो तो आप हमें जरूर बताएं, हम अपने कार्यक्रम में उसका जिक्र जरूर करेंगे।
और अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं से कि अगर उनके बच्चे ऐसा कोई गलत कदम उठाते हैं या किसी की संगत में गलत काम करते हैं तो वो क्या करेंगे।
इसमें पहले तो हम देखें कौन सी बुरी संगत में पड़ रहे हैं। बुरी संगत कई होती है, नशा हुआ, जुआ हुआ, कई हैं इसमें। तो उसमें देखेंगे हम किस क्यों जा रहे हैं उस साइड, क्या कमी है हमारे पास, उन्हें लाएंगे वापस लाने की कोशिश करेंगे।
उनको पहले प्यार से समझाएंगे और प्यार से समझा के मान जाएंगे, बच्चे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मानेंगे प्यार से समझा के तो तब डांटना तो पड़ेगा, तब डांट के समझाएंगे।
तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कि किस कारण से बुरी संगत में पड़ गया है, उसको पता करके उसको मैं प्यार से समझाऊंगा कि इसके क्या हानि है, आगे चल के इसका क्या हानि होता है, और उसको प्यार से टेक ओवर करूंगा, पता करता रहूंगा, पूरा उस पर केयरफुल करूंगा कि वो उससे दूर हो रहा है उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से उसको सॉल्यूशन दूर हो रहा है कि नहीं।
देखा दोस्तों, हर मुश्किल का हल है बशर्ते हम हार ना माने।
तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के उस स्टेज पर जहां हमें लेनी है आपसे विदा,
पर अगले हफ्ते हम फिर आएंगे इसी वक्त मिलेंगे नई दिशा कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ।
तो तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार, नमस्कार।